ఇంటి ఆనందికి అనుకుంటుంది. దేవతలు రవి గతీ
ఓమజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురుమిళితం జేనం తస్మై శ్రీగురవే నమ. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం జేన భూతలే స్వయం రూపా కదామహం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణరఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణచైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణపాదాన్ సహగణలలితా సేవిశాఖాన్వితాంశ్చ. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సరస్వతే దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాదీ పాశ్చాత్య దేశదారిణే వంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగే రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసృతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. అవి కృష్ణ బలరామ కా నామకరణ హోనే కే బాద్ ఫిర్ సుఖదేవ్ గోస్వామి బోల్తే హై కి గర్గ ముని చలే గే. ఫిర్ గర్గ ముని జానే కే బాద్ సుఖదేవ్ గోస్వామి బోల్తే హై కి కృష్ణ బలరామ ధీరే ధీరే అప్నే ఘుట్నే పర్ రెంకనే లగే. ఫిర్ వో లోగ్ గోబర్ మే ఖేల్ రహే థే మిట్టీ గోబర్ మే, ఔర్ జబ్ దూసరి మాతా లోగ్ ఆవాజ్ కర్తే థే కి దేఖే దేఖే కృష్ణ బలరామ కేసే ఖేల్ రహే, వో లోగ్ కో మాలూమ్ పడ్ జాతా థా యే లోగ్ మేరే మాతా మమ్మా నహీ హై. వో లోగ్ క్యా కర్తే థే ఫిర్ యశోదా మయా కో ఢూంఢతే ఢూంఢతే ఉన్కే పాస్ పహుంచ్ జాతే హై. ఔర్ ఆజ్ కా శ్లోక్ యే హై కి వో గోబర్ మే ఖేల్ కే యశోదా మయా కే పాస్ ఆయే ఔర్ దూధ్ పీనే లగే. తో యే లీలా అబ్ ఆగే ఆగే సిర్ఫ్ భగవాన్ కా లీలా హీ హోగా, క్యూంకి నవా స్కంద్ తక్ సారే జో ఫిలాసఫీ సబ్ సున్ లియా హమ్నే, అభీ హమ్ ఉన్కో భగవాన్ కే లీలాఓ మే జాయేంగే. తో కోయి భీ వ్యక్తి కా జైసే కి హై బచ్పన్ కా లీలా హమ్ బాత్ కర్తే హై, అభీ బాత్ కర్తే తక్ కభీ ఉస్కా వాల్యూ దేతే హమ్. जैसे कि हम बोलेंगे कि प्रभुपाद जी ने बचपन में कचौड़ी खाए, तो उस चीज को हम सीरियसली लेते हैं. हमको आनंद कब आता है जब उस व्यक्ति का महत्व मालूम रहता है कि व्यक्ति कितना महान है, तभी जाकर उनके बचपन के लीलाओं को हम कुछ महत्व देते हैं या उनको और सुनने का इच्छा होता है. जिस भगवान में गोबर में खेले, छोटा बच्चा है गोबर में खेले आके फिर दूध पिए, तो इसको अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो हम बोलते वो दूध पिया नहीं पिया हमको क्या मतलब है. तो इसलिए क्योंकि वो भगवान है, क्योंकि हम नवस्कंद तक उनके बहुत सारे उनके विभूतियों को हम पढ़े, तभी जब वो उनका वो इतना महान भगवान आके मिट्टी में गोबर में खेल रहे हैं, गोमूत्र और गोबर में खेलते खेलते आके दूध पीने लगे, तो उसको हम आनंद हमारे अंदर आनंद का अम्बुदि वर्धन होगा. तो अगर मालूम ही नहीं व्यक्ति कौन है, जब व्यक्ति का महत्व हमको मालूम नहीं उनका कितना महान है, तो हम उसको वैल्यू नहीं दे सकते. अभी प्रभुपाद ने क्या किया कि हम वैल्यू देते हैं. अगर मैं बोलूंगा मैं बचपन में क्रिकेट खेलने जाता था, तो लोग बोलेंगे कि सुनेंगे नहीं, बोलेंगे मैं भी फुटबॉल खेलता था, तो सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, वो अपना कहानी शुरू करेंगे. अगर प्रभुपाद जी के बारे में बोलेंगे तो सब लोग रेडी हो जाएंगे. जैसे कि हमारे एक कोई पॉलिटिशियन है, वो बोलते कि रात को लंठन लगा के बत्ती लगा के पढ़ते थे, तो लोग सबको सुनते हैं चलो बत्ती लगा के महान व्यक्ति पढ़ते थे. अगर मैं बोलूंगा मैं भी रात को बत्ती लगा के पढ़ता था, रात को, तो लोग बोलेंगे अरे पागल दिन में क्यों नहीं पढ़ रहा था रात को क्यों केरोसिन खत्म वेस्ट कर रहा था। तो इसलिए व्यक्ति कितना महान है जब तक वो मालूम नहीं, उसका बचपन का लीला उसका जीवन ही हम पढ़ेंगे तो उसको हम वैल्यू नहीं दे पाएंगे। तो हमारे लिए कृष्ण का लीला, प्रभुपाद लीलामृत, ये हम बहुत प्रेम से पढ़ते हैं। कोई अगर कोई नॉवल है, कोई बाहर का किसी व्यक्ति का कहानी है, तो उसका जीवन ही हम पढ़ने में सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखते, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभुपाद कितने महान है, कृष्ण कितने महान है। तो जब तक कृष्ण कितने महान है वो मालूम नहीं होगा, तो उनके लीलाओं को दो तरीके से ले सकते हैं। या तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे कि नहीं नहीं ये सब तो काल्पनिक है, ये सब सत्य नहीं है, और या तो दूसरे तरीके से हम जैसे कि कोई फिलोसफी मालूम नहीं भावुक हो जाएंगे, वो अपने भौतिक जीवन से रिलेट करेंगे कि मेरा भी ऐसा बेटा होता दूध पीता तो कितना अच्छा होता। तो या तो पूरा भावुक हो जाएंगे या तो पूरा उसको रिजेक्ट करेंगे, नहीं ये तो मिथ्या है। एक बार हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे इधर मीरा रोड स्टेशन में, एक मुस्लिम आया, बोला क्या बेच रहे हो। पहले बोला कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोले कि युद्ध करो मारो इसलिए हम मारते हैं। ये सुन के मुझे भी डर लगा, ये लोग एकर भगवान को वाणी को लेंगे तो ये तो आतंक ऐसे ही फैलाएंगे दुनिया में। तो ऐसे बोले तो मैं बोला हाँ भगवान बोलते हैं तो भगवान और भी कुछ बोलते हैं, वो आपने इस पढ़े। नहीं 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 भगवान मारने के लिए बोले इसलिए हम मारना चाहिए। फिर बाद में वही व्यक्ति बोलने लगा कि क्या ये सत्य है कृष्ण 16,000 पत्नी को शादी किया, मुझे तो नहीं लगता है सत्य, ये सब ऐसे काल्पनिक है। तो मैं उनको बोला अगर ठीक है मैं भी ऐसे ही बेच रहा हूँ सेल कर रहा हूँ प्रॉफिट के लिए, ये काल्पनिक है मुझे भी मालूम है और ये काल्पनिक है, तो आप इसमें से क्यों कोट करते हैं कि भगवान ने बोला मारो करके। क्योंकि लोग के अंदर कोई विश्वास ही नहीं, वो सोचते काल्पनिक है 16,000 पत्नी कैसे संभव हो सकता है। तो इसलिए ये ऐसे रूप एक रूप में रिजेक्ट कर लेंगे। जैसे कि क्रिश्चियन भी हमको मिले थे ट्रेन में, तो वो भी बोल रहे थे क्या तुम्हारे भगवान इतने सारे पत्नियों को रखे हैं और तुम्हारे भगवान रासलीला करते हैं। तो मैं उनको बुक डिस्कशन के टाइम पे समझा रहा था कि रासलीला अगर ठीक है कोई लड़का लड़के का संबंध देखो उनका एक एज होता है, कृष्ण का एज 7 साल का था वो, और वो शादीशुदा माताएं थे उनके साथ क्या रासलीला करेगा वो। तो इसलिए क्योंकि फिलोसफी मालूम नहीं है वो लीलाओं को क्या करते हो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ये तो बाल लीला हम ठीक है सुन लेंगे, जब रासलीला आएगा गोवर्धन पहाड़ उठाने का आएगा तृणावत का वध के और जब असुरों को वध करने का लीला आएगा तभी हमको विश्वास नहीं होगा क्या सही में ऐसा लड़का कोई किया है ऐसा। तो इसलिए उनका महान उनका जो कितना वो महान है वो चीज को हमको पहले जानना चाहिए कि कृष्ण कौन है। इसलिए पहले 9 कैंटो को हमको पढ़ना चाहिए पहले, जैसे कि बहुत सारे श्लोकों में बताया गया है कि भगवान कृष्ण ही वो एक ही भगवान है और बाकी सब उनके सेवक है। और भगवान कैसे महान है, इस भौतिक दुनिया कहाँ है आध्यात्मिक जगत में, और या भौतिक दुनिया आध्यात्मिक जगत में अंतर क्या है, कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर है, कृष्ण और देवी देवताओं में क्या अंतर है, ये अगर सब नहीं जानेंगे तो हम शिव जी का लीला में भी इंटरेस्ट रखेंगे, ब्रह्मा जी के बारे में इंटरेस्ट रखेंगे, बाकी सब देवी देवताओं को उनके लेवल पे देखेंगे, ये एक प्रकार के अपराध है। तो कृष्ण कौन है हमको पहले उनके महान महानतम जो कितने महान है वो हमको जानना चाहिए। जैसे आध्यात्मिक जगत में ये जो भौतिक ब्रह्मांड है ये बताया गया कि एक छोटा सा बादल जा रहा है, काला सा बादल तैर रहा है, उस बादल के अंदर जो कि कारणों तक साई है जो समुन्द्र है सागर, उसके अंदर महाविष्णु लेटे हैं और उसके महाविष्णु के जो लोम है वहां से सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। यश्वसित काल मथावलंब्य जीवंति लोम बिलजा जगदंड नाथ विष्णुर्महासह्य यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। जय श्री श्री राधा गिरिधर भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमैया की जय। तो वो विष्णु महाविष्णु वो महाविष्णु के लोम से ये सारे जगत सारे ब्रह्मांड का प्रकट होता है और एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा जी रहते हैं उस ब्रह्मांड को जो सेकेंडरी क्रिएटर है। तो इतने महान है, जो महाविष्णु का भी स्रोत कौन है कृष्ण है और उनके महान कितने महान है वो। फिर उस एक एक ब्रह्मांड के अंदर एक छोटा सा ब्रह्मांड बहुत सारे लोम से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, उसमें एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी है जो कि भगवान गर्भोदकशायी विष्णु के नाभि से जो पद्म फूल निकला है उस जो डंडे के अंदर उस नाड़ी के अंदर। फिर 14 भुवन है उसका विधानकर्ता कौन है यहाँ का क्रिएटर वो ब्रह्मा जी, और उसके अंदर एक प्लानिटरी सिस्टम है स्वर्ग है तपलोक महोलोक जनलोक ब्रह्मलोक इसमें सारे देवी देवता है। तो भगवान के सामने ये लोग कुछ भी नहीं है, भगवान के सामने कितना छोटे है उनके स्थान, ये अगर जब तक मालूम नहीं पड़ेगा तो हम भगवान को देवी देवताओं को भी उनके लेवल पे समान समझेंगे। तो पहले हमको भगवान के कितना महान है उस चीज को हमको समझना चाहिए, फिर हम उनके लीलाओं में जा सकते हैं। जब लीला भगवान आते हैं यहाँ इस धराधाम पे, दो कारण पे आते हैं, जैसे कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। भगवान इस धराधाम पे दो कारण पे आते हैं, एक तो साधुओं को रक्षा करने के लिए और उनको आनंद प्रदान करने के लिए, और राक्षसों को या जो असाधु है उन लोगों को विनाश करने के लिए। मेन कारण यह है कि वो लोग भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए ही आते हैं। भगवान भी भक्तों के बिना रहते ही नहीं कहीं भी, को भी आप देखेंगे कि अकेले कृष्ण खड़े हैं तो कृष्ण किसके साथ रहते हैं, बांसुरी के साथ रहते हैं, तो बांसुरी भी उनका भक्त है। तो इसलिए भगवान कभी अकेले नहीं रहते, और भक्त भगवान के प्रति अहितु की भक्ति करते हैं कि नहीं पता नहीं, मगर भगवान भक्तों का अहितु की भक्ति करते हैं। भगवान हमेशा भक्तों के लिए रहते, ऐसा कोई कार्य नहीं जो कि वो अपने लिए करते, अपने प्रसन्नता के लिए कभी कुछ करते नहीं, वो सिर्फ भक्तों के लिए करते। इधर भी देखिए, भगवान आए दूध पिए और भगवान यशोदा माया को देख के हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और यशोदा माया भगवान को देख के खुश हो रहे हैं। सिर्फ भक्तों को आनंद देने के लिए ही भगवान लीला करते हैं, और भगवान अपने सब कुछ भूल जाते हैं। मेरा इज्जत खराब होगा चलेगा, मगर भक्त आनंद में रहना चाहिए। जैसे हम देख सकते हैं महाभारत में कि भीष्मदेव भगवान प्रतिज्ञा लिए थे कि मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मगर जब अर्जुन को भीष्मदेव ने इतना परेशान किया उस दिन, इतना तीर लगा कि अर्जुन के चारों ओर खून आ रहा था, पसीना हो गया था, अर्जुन थक गए थे इतना समय में, तो भगवान को बहुत गुस्सा आया। अभी जाके नीचे से वो रथ का पहिया उठा के मारने लगे तो अर्जुन आके पकड़ लिए, नहीं 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 आपने तो वचन दिया था कि नहीं उठाएंगे पहिया, कि अस्त्र नहीं उठाएंगे। बोले नहीं नहीं मेरा वचन का बाद में, मगर आपको वो तंग किया इसलिए मैं उसको मारूंगा अभी। तो भीष्मदेव खुश हो गए, चलो मारो आप, अभी यही चीज का इंतजार था मुझे। इस एक ही चीज नहीं, हर एक हम बहुत सारे लीलाओं में देख सकते हैं। और भगवान का बाल लीला और जो महाभारत का लीला, वो प्रॉपर पहला जो चैप्टर है भगवत गीता का, उसमें लेक्चर में बताते हैं, कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं कि हम बाल लीला पढ़ेंगे और रासलीला पढ़ेंगे और महाभारत लीला छोड़ देंगे, नहीं। भगवान जहां जहां है, भगवान से रिलेटेड जो भी है सब महान है, सब दिव्य है। तो महाभारत में हम और भी देख सकते हैं कि भगवान कैसे भक्तों के लिए ही जीते थे, भक्तों को बचाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते थे। जैसे कि अर्जुन को जब अभिमन्यु का वध हो गया, अभिमन्यु को मार दिया सब लोग मिलके, तो रात को अर्जुन आके बहुत क्रोधित हो गए कि अभिमन्यु को मार दिए, आप लोग क्या कर रहे थे, भाई लोग को गाली देने लगे, आप लोग होते हुए अभिमन्यु मर गया मेरा बेटा। तो बाद में सब लोग रो रो के बोले, नहीं नहीं क्या हुआ कि वो बीच में जयद्रथ आ गया था, इसलिए हम नहीं जा पाए उस तरफ मार उनको बचाने के लिए। तो अर्जुन ने गुस्से से प्रतिज्ञा ले ली, जयद्रथ तो उसको मैं कल सूर्यास्त से पहले उसका वध करूंगा, अगर नहीं किया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। तो प्रतिज्ञा तो ले ली है, मगर रात को 12 बजे तक उनको नींद नहीं आ रहा था कि बोल तो दिया, पता नहीं कल मार पाऊंगा या नहीं। तो भगवान फिर सुभद्रा मैया के पास गए, बोले उनको आश्वासन देके कि उनका बेटा मर गए थे। फिर आके बोले कि अर्जुन को क्यों चिंतित हो, तो अर्जुन रो रहे थे, बोले क्या आप प्रतिज्ञा ले ली, मार पाएंगे कल जाके जयद्रथ को। तो अर्जुन बोले, फिर अपना गुणगान थोड़ा किए कि नहीं नहीं मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर बाद में बोले, पता नहीं, अगर आप हो इसलिए मुझे टेंशन नहीं। तो भगवान बोले, चिंता मत करो, जब तक मैं हूं आपको कुछ नहीं होगा, कल जयद्रथ पक्का मरेगा। फिर सुबह हो गया, युद्ध किए, पूरा दिन युद्ध करते करते इतना दूर, महाभारत का वर्णन है कि इतना बड़े बड़े रथ थे उसमें, और उसमें इतने दूरी से, इवन 20 किलोमीटर दूर से भी दिखता था रथ का जो झंडा रहता था। पूरा दिन युद्ध करते करते करोड़ों लोगों को मारते मारते अर्जुन 4 बज गया, शाम हो गया, तब तक जब पहुंचे अपोजिट पार्टी के पास, तब भी 20 किलोमीटर दूर में थे जयद्रथ और उसके आसपास द्रोणाचार्य सब थे। उस कुछ माइल्स लिखा गया, उसको कैलकुलेट किया तो मुझे 20 किलोमीटर होता है। तो इतने दूर से देख के जयद्रथ कांपने लगा कि अर्जुन आ गया, कि अर्जुन बोला अभी इतने दूर कैसे जाए मारने के लिए। तो फिर भी वो लोग मारते 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 भीम के साथ नजदीक पहुंच गए। फिर नजदीक पहुंचने के बाद द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण सब लोग सामने ही थे, सब लोग युद्ध में उनको रोक रहे थे। फिर सूर्यास्त होने को ही आ रहा था, जस्ट कुछ मिनट बाकी था। फिर उस टाइम पे भगवान उनको, अर्जुन को कान में बोल दिए पहले कि अभी सूर्यास्त हो जाएगा, मगर वो मैं करवाऊंगा, आप जैसे ही सब लोग अस्त्र नीचे करेंगे जयद्रथ को, आप उनके सर उड़ाओ ताकि वो सीधा जाके उनके पिताजी के गोद में ही गिरे, ताकि उनका भी मृत्यु हो जाए। तो जैसे ही सूर्यास्त भगवान करवा दिए, सूर्य को ढक दिए, फिर तुरंत सब लोग नीचे धनुष करके बहुत खुश हो गए। खुश होते फिर भगवान अर्जुन ने एक तीर मारा और जयद्रथ का गर्दन जाके उनका सर उनके पिताजी के गोद में गिरा। फिर तभी सब लोग बोले अरे ये तो आपने धोखा दिया। बोले नहीं नहीं धोखा नहीं, देखिए सूर्य अभी तक अस्त नहीं हुआ है। तो ये देख के सब लोग घबरा गया, अभी तो सूर्य अस्त हो गया था, वापस सूर्य कहाँ से आ गया? इसमें क्या पता चलता है कि कौन मदद किया उनको? कृष्णा। तो तभी भी युधिष्ठिर महाराज रो रो के बोल रहे थे, हे भगवान आपने वापस हमको बचा दिया, हमको बहुत सारे जगह आपने बचाया मगर आज वापस बचाया, अगर आज आप नहीं होते तो अर्जुन आज अग्नि में प्रवेश करता। भगवान वो ऐसा लगता है कि गलत किए, ऐसा चीटिंग किए, मगर भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार है। किन के लिए? अपने भक्तों के लिए। ऐसा बहुत स्थान में भगवान उनको मदद करते हैं भक्तों को। तो भक्त भगवान हरेक लीला इसलिए करते हैं उनके भक्तों को ही आनंद प्रदान करने के लिए भगवान लीलाएं करते हैं। तो आज के इसमें हम देखते हैं कि भगवान जैसे ही उनको थोड़ा शक्ति आ गया, थोड़े बड़े हो गए, फिर घुटने पे रेंगते रेंगते रेंगने लगे है? फिर आके वो क्या किए, वो गोबर और गोमूत्र में खेल रहे थे, ऐसा चल रहे थे। फिर वो दूसरी माताओं को देख के वो डर गए। फिर यशोदा माया और रोहिणी माता के पास दोनों कृष्ण बलराम आ गए और दोनों आके दूध पीने लगे। तो इसमें आज का श्लोक में ये बताया गया कि लोग किसमें रेंग रहे थे? गोबर और गोमूत्र पे। अगर आज कमलोचन को होते तो आज काव प्रोडक्ट के ऊपर 1 घंटा क्लास दे सकते थे। मुझे इनका महत्व इतना मालूम नहीं गोबर और गोमूत्र, मगर ये गोबर पवित्र होता है और ये शास्त्रों में लिखा गया है और भगवान ने भी इसको प्रूव किया है। अगर और इस गोबर में और धूल में आने के बाद भी मिट्टी में और उनके माता उनको गोद में ले लिए, अगर कोई बच्चा आज अगर खेल के आया धूल में तो उनके माता पिता छूते भी नहीं, पहले नहा के आओ फिर मेरे पास आओ। फिर वो लोग आने के बाद और भगवान बहुत सुंदर लग रहे थे, गोबर गोमूत्र में खेल के आने के बाद भी वो सुंदर लग रहे थे। और दोनों आके गोद में बैठ गए और दोनों बहुत प्रेम से माताएं उनको आलिंगन किए और दूध पिलाने लगे। और अच्छा हुआ कि माता ने दूध पिलाते सीधा डायरेक्ट, अगर बोतल का दूध दे दे तो क्या युद्ध करते। इसकी उनकी माता ने दूध पिला इसलिए वो लोग इतना ताकत शक्ति रहता था। एक भक्त बोल रहे थे, मैं पुणे में था क्लास में, पहले बोलते थे माँ का दूध पिया तो सामने आ, अभी बोलते माँ का दूध पिया तो बाजू हट, बोतल का दूध पिया तो सामने आ, क्योंकि अभी माँ का दूध में भी कोई शक्ति नहीं है और वो पिलाते भी नहीं है, इतने कंजूस है। क्योंकि जब दूध पिलाते माता जब बेटे को दूध पिलाते हैं तो माँ और बेटे में एक संबंध बनता है, क्योंकि वो जब आंखों के आंखों मिलता है तो भी एक रिलेशन बनता है, तो माँ को प्रेम करता है व्यक्ति। और कमलाचल को भी बता रहे थे जो माँ बच्चे को दूध पिलाता है तो वो व्यक्ति कभी काम वासना उसको ज्यादा नहीं सताएगा, अगर वो व्यक्ति माँ का दूध पिया है तो। नहीं तो और उसको जो माँ का दूध पीता है उसको शक्ति भी मिलता है और उसका बुद्धि भी तेज होता है। अगर नहीं अगर बोतल का दूध पिया, देखिए शहर में सब लोग बोतल का दूध का आदत है और वो लोग को देखिए कॉमन सेंस भी नहीं होता है उन लोग को, किसको पैर लगा प्रणाम करना चाहिए मालूम है, हमको कोई बताया नहीं, ऐसे बचपन से मालूम है जो गांव से आप उन लोग को मालूम रहेगा। मगर शहर में माता पिता दोनों ऑफिस में जाते हैं कि दोनों के पास टाइम नहीं है तो बोतल का दूध पिलाने दे दें और उस बच्चे को बोतल का आदत हो जाता है, फिर उसका सारा बुद्धि भी नाश होता है, कॉमन सेंस भी नहीं रहते और माता के पिता के प्रति प्रेम भी चला जाता है। तो एक लड़का बोल रहा था मुझे कि मेरे माँ इतना निष्ठुर है कि आम खरीद के लाए आम के सीजन में और छुपा छुपा के खुद खा रही है और मुझे कैसे मालूम पड़ा कि देखा कि घर के पीछे गुटली पड़ा है, मतलब अरे आम कहाँ से है, मैं ढूंढा तो आम मिला। और तो इसलिए ऐसे ऐसे माँ होते हैं जो कि बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं, तो उन लोगों को ना बच्चों के प्रति प्रेम है ना बच्चों को माँ के प्रति प्रेम है, क्योंकि वो लोग माँ माता पिता दोनों बच्चों को छोड़ देते हैं और प्रेम नहीं करते। देखिए कितना प्रेम कर रहे थे ये लोग और दोनों देख के भाव, जब उन लोग का दांत आ रहा था देख के खुश हो रहे थे, कृष्ण बलराम का गोद में लेके आलिंगन किए दूध पिलाए। जब माँ बच्चे को बहुत प्रेम करती है तभी वो बच्चा अच्छे से उसको जितना प्रेम देंगे और वो अच्छे से वो बड़े होगा और वो कभी गलत कार्य पे नहीं जाएगा। अगर प्रेम नहीं देंगे तो उसको क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन, उसको माइंड डिस्टर्ब रहेगा, एंग्जाइटी, और बाद में वो जो वो प्रेम को वो क्या करेगा, वो उसको पूरा करने के लिए दूसरे किसी व्यक्ति से आशा करेगा या तो ड्रग्स लेगा नशा लेगा, वो फिर व्यक्ति बिगड़ जाता है। तो इसलिए क्योंकि घर में उनको पूरा प्रेम मिलना चाहिए कोई भी बच्चों को, मगर कभी कभी यहाँ माँ बच्चे को इतना प्रेम करते हैं यहाँ भी, क्योंकि इतना प्रेम करते हैं कि बच्चा बिगड़ जाता है, फिर बात ही नहीं सुनता है। और अगर बच्चे को कुछ बोलेंगे, जैसे हमारे एक प्रभु जी किसी को बोले कि आपका बच्चा बंदर जैसा कूदता है मस्ती करता है तो उनको माँ को अच्छा नहीं लगा, तो मैं बोला प्रभु जी आप वत्सल्य रस में सेवा कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब मत करो, वो प्रेम कर रहे हैं उनको। तो इतना भी प्रेम नहीं करना चाहिए कि बच्चा बिगड़ जाए, मगर प्रेम तो करना चाहिए बच्चों को। अगर बचपन में हम अगर उसको बोतल का दूध पिलाएंगे तो उसको बोतल पकड़ने का आदत हो जाएगा। तो धीरे 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 थोड़ी देर कुछ दिन बड़ा होने के बाद फिर बोलेगा मुझे स्प्राइट चाहिए। हमारा एक भक्त है यहाँ, कोई नाम मालूम नहीं, बहुत स्प्राइट पीता है वो, छोटा लड़का है, तो इसलिए उसको स्प्राइट का आदत हो जाएगा। फिर फेंटा पिएगा, फिर ये वो बहुत कुछ पिएगा जब तक उसको कॉलेज में नहीं जाता है, क्योंकि तब तक घर में उसको पाबंदी रहता है। फिर कॉलेज में जाने के बाद वो दूसरे को चालू करेगा, हाँ, जो नहीं पीना चाहिए। वो फिर वो नशा करेगा, बियर पिएगा, इधर उधर का बहुत कुछ पिएगा। फिर बाद में धीरे धीरे, क्योंकि वो इतना नशा किया रहेगा, वो वृद्ध होने पर उसको इतना बीमारी आएगा, फिर दवा का बोतल उसको पीना पड़ेगा। तो इसलिए बचपन से ही माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा क्या खाता है, क्या पीता है, बहुत जरूरी है। क्योंकि माँ सब कुछ खाती है, सारे वो व्यंजन खा सकती है, और उसको सार रूप में दूध पिलाती है। और वो बोतल का दूध जो रहता है वो दूध नहीं रहता है। तो एक हमारे आश्रम में पहले पैकेट का दूध एक बार जो पैकेट में आता है ना वो दिए थे, तो मैं उसको पिया नहीं। तो एक भक्त बोले, अरे कुछ तो पियो, शक्ति मिलेगा, दूध है। मैं बोला, प्रभु जी ओरिजिनल दूध में एक गिलास पानी मिलाओ, हाँ, आधा गिलास दूध में, तो उसमें थोड़ा तो रहेगा उसमें, और पैकेट का तो दूध ही नहीं है वो, हाँ, और दूध रहेगा तभी तो कुछ शक्ति मिलेगा उसमें। मैंने सुना कि वृंदावन में एक बार राधारमण महाराज कोई गौशाला में गए थे, किधर जहाँ दूध मिलता है, वो बोला कि दूध नहीं है हमारे पास। वो बोले बहुत क्वांटिटी चाहिए, कुछ अरेंज करो। पहले सोचा वो ठीक है अरेंज करता हूँ। फिर कुछ ही देर में वो एक बड़ा बर्तन में दूध लेके आया। बोला, ये दूध इतना जल्दी कैसे आ गया आपके पास? तो उसको पकड़े महाराज, उसके पीछे पड़े, बताओ दूध कैसे आया। तो वो बताया, एक टैबलेट मिलता है कुछ, तो मेंढक का चर्बी का टैबलेट, वो एक ड्रम में डालो, वो पूरा दूध बन जाएगा। बोला ऐसा ऐसा दूध बनाते हैं, और उसी दूध को हम खरीद के लाते हैं, बच्चों को पिलाते हैं, उसमें क्या शक्ति मिलेगा? उसमें पूरा बुद्धि नाश हो जाता है। आप बोलेंगे क्या इफेक्ट होता है बाहर का खाने से, क्या इफेक्ट होता है? उसका जो बुद्धि रहता है वो कॉमन सेंस भी चला जाता है, वो उसका बुद्धि काम नहीं करता है, वो ऐसे अद्भुत तरीके से या तो ऐसा पागल के जैसा जीता है बच्चा। तो इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को कितना ध्यान दिया जाए। अगर जैसे यशोदा माता कितना ध्यान देती थी कृष्ण को, तो अभी बाहर का, जैसे कि बाहर का आजकल के हमारे भक्तों के बच्चों के लिए भी ध्यान देना चाहिए कि जो बाहर का आते हैं कुरमुरे लेस ये वो वगैरह वगैरह चटपटे नहीं खाना चाहिए। जो बनाने घर में बनाइए उनको देख के भेजिए स्कूल में, और बाहर का नहीं खाना चाहिए। चॉकलेट भी खाते बहुत सारे बच्चे, चॉकलेट भी नहीं खाना चाहिए। तो जो भी है घर में बना के दीजिए, अगर बाहर का खाएंगे तो वो चेतना अशुद्ध होता है, धीरे 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 व्यक्ति गलत रास्ते पे जाता है। और यशोदा माता जब कृष्ण और बलराम बाहर मक्खन चोरी करने जाते थे, दही मक्खन चुराते थे, तो यशोदा मैया बोलती थी कृष्ण को, बाहर चुराने का क्या जरूरत है, जो चाहिए मैं घर में बना दूंगी, जो खाने घर में खाओ, बाहर मत जाओ। और भगवान बाहर ही जाते थे, उनको मजा आता था, चुरा के खाने में जो आनंद है वो ऐसे अवेलेबल है तो नहीं खाते। तो इसलिए जैसे कि घर में भले ही हमारे घर के पीछे बहुत सारा आंगन में पेड़ पौधे था, जो कि आम का भी पेड़ था, नारियल का भी पेड़ था, मगर हम अपने घर से नहीं लेते थे, जाके पत्थर मार के दूसरे का चुरा के खाते थे। तो उसमें जो आनंद है वो घर में खाने का आनंद नहीं है। तो इसलिए बच्चों को बहुत ध्यान देना चाहिए, और माँ को बहुत प्रेम करना चाहिए, और उसको माँ का दूध जरूर पिलाना चाहिए। आजकल लोग, माँ का ड्यूटी है, माँ का ड्यूटी क्या है कि बच्चों को दूध पिलाए और अच्छे से उसको देखभाल करे। तो कोई एक भक्त बता रहे थे हमको कल, तो बोले कि आज माता पिता दूध, माँ क्यों नहीं दूध पिलाते, वो अपने ब्यूटी के चक्कर में वो अपना ड्यूटी भूल जाते हैं बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं। तो इसलिए हम बच्चों को मत ध्यान देना चाहिए, उसको एक केयर करना चाहिए, और खास करके जो भक्त बच्चे हैं उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप भक्त है, आपके घर में जो भी बच्चा जन्म लेता है वो पिछले जन्म का उसका भक्ति कुछ कम हो गया, या कोई जैसे कि कोई पुण्यवान है, या कोई भक्ति करते करते आधे छूट गया, अनसक्सेसफुल योगी, वो सब अभी जन्म लेते हैं। तो उन लोग को हम तो ध्यान से उनको केयर करना चाहिए, और उन लोग को भक्ति में भी लाना चाहिए, भक्ति उनको सिखाना चाहिए, और अच्छे से ध्यान भी देना चाहिए। तो आगे बताते हैं, दूध पीते पीते कृष्ण हंस रहे थे, कृष्ण बलराम दोनों, और माताओं भी हंस रहे थे, और उनका छोटा छोटा दांत दिख रहा था, और उसको देख के उनको बहुत आनंद हुआ। और कितना ध्यान देते हैं, देखिए अगर जब प्रेम है तो हम डिटेल में जाते हैं, बोलते हैं कि अटेंशन इन डिटेल इज द साइन ऑफ लव। आप अगर डिटेल में जाते हैं किस चीज में, तो किसका प्रतीक है वो प्रेम का वो प्रतीक है, कि अगर प्रेम है तभी डिटेल में जाएंगे हम। जैसे कि भगवान राधा गिरधर का कितना डिटेल में गिरधर को सजाए, एकदम डिटेल में कहाँ कौन सा फूल रखना है एकदम सजा के रखते हैं। और जो भक्त प्रेम करते भगवान पे वो डिटेल से दर्शन करते हैं, ऐसा नहीं दंडवत मार दिए और प्रणाम मंत्र बोले कि नहीं ऐसा देख लिए चले गए, ऐसा नहीं, ऑफिशियली से दंडवत नहीं मानना चाहिए, क्लियर देखना चाहिए एकदम डिटेल, चरण से लेकर उनका कैसे सजाया गया है, कौन सा कलर का ड्रेस पहने हैं, वो अच्छे से देखना चाहिए। एक मैं हमेशा जब ब्रह्मचारी क्लास होते तो भक्तों को पूछता हूँ आज भगवान कौन सा कलर का ड्रेस पहने, तो दो लोग बोलते, दो लोग भूल जाते कौन सा कलर था ड्रेस है, क्योंकि डिटेल में नहीं देखते हम। तो इसलिए भक्तों को डिटेल में देखना चाहिए भगवान को दर्शन करते वक्त। एक बार श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर का एक भक्त थे, वो शायद कोई बाहर थे, वो सीट में उनका कुछ जॉब था और राधाष्टमी था और उनको राधारण का दर्शन करना था और वो दूर थे, बहुत दुखी थे वो, कैसे दर्शन नहीं हुआ आज, मुझे मंदिर में होना चाहिए। और वो इतना डिटेल से भगवान राधारानी का दर्शन किए थे कि जो ड्रेस का वो दर्शन किए थे वो उस ड्रेस का पेंट किए और एग्जैक्टली वैसे ही दिख रहा था वो पेंट करके आके भक्तों को बाद में दिखाए कि वो कितना डिटेल से भगवान का दर्शन किए थे। तो इसलिए हमको बहुत डिटेल से जाना चाहिए, जो अटेंटिव होना चाहिए, अटेंशन, ये चीज को याद रखिए, अटेंशन एंड डिटेल इज द साइन ऑफ लव। तो इसलिए जितना डिटेल में हम जाएंगे उतना अपना प्रेम प्रकट कर पाएंगे हम कि हाँ हमारा प्रेम है करके। कोई भी सेवा करते हैं उसको एकदम डिटेल में करना चाहिए। इवन इसलिए बोलते हैं कि जब भी करते तो भी वो अटेंटिव होकर करना चाहिए, अगर अटेंटिव नहीं है तो उसमें प्रेम नहीं है। हम ऐसे ही अगर करेंगे जब तो फिर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो हमको नाम लेते वक्त भी क्लियर बोलना चाहिए और अटेंटिव होकर बोलना चाहिए, जैसे कि एक एक शब्द को बोलना चाहिए। कभी बोलते बोलते हमारा शब्द मिस हो जाता है, लास्ट में हरे हरे तो कभी मिलता ही नहीं, हरे हरे बोल रहे कि क्या बोल रहे समझ में भी नहीं आ रहा है। तो एक एक शब्द को पूरा अटेंशन के साथ अटेंटिव होकर सुनना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक शब्द को अगर सुनेंगे बोलेंगे तो वही हृदय के अंदर जाके हृदय का जो अभद्र है उसको क्या करेंगे, वो अभद्र को निकल देगा। वो निकलने के बाद तभी हमको ये भगवान के जो लीला है उसको वो हम समझ सकते हैं। अगर अंदर अभद्र है तो हम लीलाओं को समझ नहीं सकते, हम अपनी दृष्टि से देखेंगे उस चीज को, या तो भावुक हो जाएंगे, या तो हमको विश्वास नहीं होगा, या तो हम अपने जीवन में जो भौतिक जीवन के साथ उसको तुलना करेंगे। तो इसलिए भगवान के लीलाओं को समझने के लिए पहले भगवान को कितने महान है उसको जानना चाहिए और हमारा हृदय भी शुद्ध होना चाहिए भगवान को लीलाओं को समझने के लिए, क्योंकि हम हृदय अगर शुद्ध नहीं लीलाओं को समझ नहीं सकते। जैसे हम पुणे में ट्रेनिंग चल रहा था तो हम कृष्ण बुक रात को दूध पीने के बाद पढ़ते थे ब्रह्मचारी लोग, तो 50 भक्त न्यू भक्त साथ में पढ़ते थे, तो उसमें कृष्ण बुक पढ़ते 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 हम गए रात को रोज 15 मिनट। जब रासलीला का सेक्शन आया हमारे जो लीडर थे वो बोले उस सेक्शन को छोड़ दो आगे, फिर कृष्ण का दूसरा लीला चालू करो। तो हम पूछे क्यों ऐसा, बोले क्योंकि आप उतना शुद्ध नहीं हो, वो पढ़ने के बाद आपके अंदर आपका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए वो सेक्शन को छोड़ दिए थे हम। तो इसलिए जब तक हृदय शुद्ध नहीं है हम लीलाओं को समझ नहीं सकते, इसलिए पहले हमको भगवान के बारे में जानना चाहिए। प्रभुपाद भी बोलते हैं पहले कंटो में इंट्रोडक्शन में बोलते हैं कि ये रेकमेंड किया गया कि पहले स्कंद से पढ़ते पढ़ते 9वां स्कंद तक आना चाहिए, फिर 10वां स्कंद में जाना चाहिए। और डायरेक्ट अगर 10वां स्कंद में चले जाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे उसको। हालांकि प्रभुपाद का तात्पर्य इतना सफिशियंट सेल्फ सफिशियंट है एक को समझाने के लिए, फिर भी लीलाओं को समझने के लिए पहले हमको तब को जानना जरूरी है। अगर इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं साप्ताहिक कथा मत कीजिए, क्योंकि वो डायरेक्ट कभी आप भगवान का कोई एक लीला ले लेते, अगर डायरेक्ट लीला लेंगे तो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। ठीक है अगर प्रचार के लिए है बहुत लोग हरि नाम जप कर रहे हैं तो अलग बात है, और फिर भी डायरेक्ट अगर लीला बताएंगे बिना, इसलिए कमलोचन को क्या करते हैं 6 सेशन कोर्स करते हैं भगवद गीता, और डायरेक्ट भागवतम का नहीं करते हैं। और अगर भागवतम का करते हैं तो पहला स्कंद का नारद व्यास संवाद वो करते हैं। डायरेक्ट अगर सोचिए आज बोलेंगे कि रासलीला के बारे में करेंगे, कृष्ण का बाल लीला दामोदर लीला करते हैं, मगर लीला सुनते ही लोग, क्योंकि भगवान के बारे में जानते ही नहीं लोग, लोग भगवान को और देवी देवता को समान समझते हैं, उनका लीला उनको उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, और सुनने के बाद वो लोग हो सकते हैं कि गलत तरीके से भी ले लें। तो इसलिए पहले हमको फिलोसफी जानना चाहिए फिर भगवान की लीलाओं में जाना चाहिए, तो हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। और इसमें तात्पर्य में भगवान बताते हैं, प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि जब ये भगवान दूध पीने चालू किए तब ये योग माया के द्वारा उनको योग माया के प्रभाव से उन लोग भूल गए, वो लोग अपने भगवान ही करके भूल गए और उनको अपने माँ ही समझे। एज द मदर केयर्ड फॉर द रेस्पेक्टिव बेबीज बाय द अरेंजमेंट ऑफ योग माया द बेबीज थॉट हियर इज माई मदर एंड द मदर थॉट हियर इज माई सन। तो एक भक्त बता रहे थे इसके ऊपर, तो बोलते योग माया करके क्यों प्रभुपाद लिखे। अगर सोचिए योग माया अगर नहीं लिखते तो व्यक्ति क्या सोचता कि कृष्ण यादव वो मेरे कुल के हैं, मेरे ही कोई दादा परदादा का कोई कृष्ण व्यक्ति है, कोई महापुरुष है, वो भी यूपी के थे, मैं भी यूपी का हूँ, वो भी एक साधारण व्यक्ति है समझते। तो साधारण व्यक्ति महामाया के द्वारा वो नियंत्रित किया जाता है, और जब वो भगवान का लीला होते वो योग माया का अरेंजमेंट रहता है। तो बहुत लोग बोलते हैं, एक एक व्यक्ति बोल रहा था कि कृष्ण एक महापुरुष है, वो ऐसे ही थोड़ा उनके पास कुछ जादू शक्ति था इसलिए कुछ कार्य करके दिखा दिए। तो उसके बेटा अच्छा व्यक्ति था, वो बोला कि आप पागल हो गया, कृष्ण महापुरुष बोलो, कृष्ण भगवान थे ना, इसलिए जब योग माया और महामाया का डिफरेंस हम अगर जानते हैं कि भगवान का लीला योग माया के प्रभाव से होता है तो हम उसको ये जो भौतिक स्तर पे उसको नहीं देखेंगे। तो ये भगवान का लीला किसके द्वारा कार्य होता है, योग माया के प्रभाव से वो अपने यशोदा माया को माँ समझे और यशोदा माया कृष्ण को माँ समझे, क्योंकि इसके पहले भगवान ने अपने विश्वरूप मुंह में ही दिखा चुके थे, क्योंकि वो अपने ऐश्वर्य दिखाने के बाद भी योग माया के द्वारा भगवान यशोदा माया क्या सोचते, भगवान को कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, कृष्ण को अपने बेटे ही मानते थे। और ये जितना ग्रेटनेस जानने के बाद भी प्रेम बढ़ता है, जैसे कि कृष्ण का बहुत सारा नामों का वर्णन हुआ और उनका गुणों के बारे में गर्ग मुनि बताने के बाद भी नंद महाराज ये नहीं सोचे कि मेरा बेटा इतना महान है, डर नहीं गए, वो क्या कि और प्रेम बढ़ गया, अभी मैं इनको अच्छे से ध्यान दूंगा क्योंकि वो मेरा बेटा इतना महान है। जैसे मैं पिछले बार भी बोला था कि ऐसे नहीं देखते हैं कि जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर है किसका बेटा, तो वो कैसे देखता है कि प्राइम मिनिस्टर मेरा बेटा है, ऐसा नहीं देखता है। अगर ऐसा देखेगा तो जो वात्सल्य रस है वो असर नहीं कर पाएगा, वो देखता है कि मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर है तो सबको बोलेगा अगर मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर बना है तो। इसलिए वो जानते हैं बड़ा है वो कृष्णा, फिर भी वो क्या करते थे, वो प्रेम करते क्योंकि वो योग माया के द्वारा वो आवृत होके ये सोचते थे कि मेरा बेटा कृष्णा, भगवान को भी मेरा बेटा मानते थे। तो जब कृष्ण भगवान को बांध दिए थे यशोदा मैया, तो उस टाइम पे बलराम जी कहाँ गए थे, आए और देखे, अरे कृष्ण आपको कौन बांध दिए, तो फिर वो बोलने लगे कौन बांधा कृष्ण को, हाँ कृष्ण जहां मालूम नहीं वो भगवान है और मैं अनंत शेष हूँ। तो तभी यशोदा मैया लकड़ी लेके आए, अच्छा सारे भगवान मेरे घर में आ गए, जैसे लकड़ी दिखाई वो भागने लगे, क्योंकि वो भगवान करके मानते ही नहीं थे, कितना भी दिखा दे, कितने राक्षसों को मारे, रोज लीला सुनते थे कि ये भगवान ने आज ये राक्षस को मारा, ये बड़ा बड़ा कार्य किया, ये महान कार्य किया, ये सुनने के बाद भी, इवन गोवर्धन उठाने के बाद भी, इतना बड़ा पहाड़ को छोटा से उंगली में उठाने के बाद भी वो विश्वास नहीं किया कि वो भगवान है, वो सोचे शायद कोई देवी देवता ने कुछ स्पेशल शक्ति दिया है, भगवान का कुछ विशेष कृपा है मेरे बेटे के ऊपर, फिर भी विश्वास नहीं हुआ उनको कि मेरा बेटा भगवान है, क्योंकि योग माया के द्वारा वो कंट्रोल किया जाता है भगवान की लीला। बिकॉज ऑफ एफेक्शन मिल्क नेचुरली flowed from mother's breast and the babies drank it. When the mother saw small teeth coming in, they would count them and be happy. And when the babies saw their mothers allowing them to drink their breast milk, the babies also felt transcendental pleasure. As this transcendental affection continued between Rohini and Balaram and Yashoda and Krishna, they all enjoyed transcendental bliss. तो यही सिर्फ भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए ही उनके घर में आए थे, क्योंकि उनका इच्छा था कि भगवान जैसा कोई व्यक्ति मेरा बेटा बने, वो पिछले जन्म में तपस्या किए थे, इसलिए भगवान उनके घर में आए और उनको ही आनंद प्रदान करने के लिए ही ये सब लीला कर रहे हैं। नहीं तो भगवान ऐसे गोबर में गोमूत्र में खेल के छोटे बच्चे के ऐसा लीला क्यों कर रहे हैं, ताकि यशोदा माया को आनंद मिले, उनके भक्तों के आनंद के लिए कर रहे थे। और ये देख के अगर हम भगवान को सही से नहीं समझ पाए तो ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए थे, इंद्र भी भ्रमित हो गए थे। जैसे ब्रह्मा विमोहन लीला में एक भक्त बता रहे थे कि ब्रह्मा विमोहन लीला जब हुआ था उसके पहले जो मधु मंगल वो क्या कहते थे, वो उनके घर से छाछ लेके आए थे, वो बहुत शायद 2-3 दिन पहले का था, बहुत खट्टा हो गया था, वो लेके आए थे वो जब वो गाय चराने जा रहे थे। तो कृष्ण बोले कि जो भी आप लाए मुझे भी थोड़ा देना, तो बोले नहीं नहीं वो ज्यादा खट्टा हो गया है, वो आप नहीं पी पाओगे करके वो क्या कि पूरा मुंह में डाल दिए, पूरा पी लिया और लास्ट वाला जो मुंह में पूरा भर के रखे थे। कृष्ण बोले अंदर मर डालो बहुत पीटूंगा तुमको, मुझे चाहिए वो छाछ कैसे टेस्ट करना है, बोले नहीं 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 करके मुंह में रख के भागने लगे। तो कृष्ण उनके पीछे भागते 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 गए और उनका मुंह भरा हुआ था, फिर उनको पकड़े उनका मुंह को जोर से ऐसे मारे, तो जैसे मुंह से बाहर आए वो मुंह खोल के कृष्ण पी लिए। और ये देख के ब्रह्मा जी विचलित हो गए, अरे मुंह का झोटा, इतना मंत्र बोलने के बाद भगवान स्वीकार नहीं करते और मुंह का झूठा कैसे पी लिए, क्योंकि वो लीला कर रहे थे भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। वो सब लोग थोड़ा टेस्ट करेंगे, कोई रसगुल्ला लाया थोड़ा खाएगा, हाँ अच्छा है आप खाओ, तो कृष्ण खाते हैं, अगर अच्छा नहीं तो देते नहीं थे कृष्ण को, वो लोग इतना प्रेम करते थे कृष्ण को। तो इसलिए ये सब प्रेम का जो लीला इसलिए करते थे ताकि वो भक्तों को आनंद प्रदान करे, इसलिए भगवान ये सारे लीलाओं को करते थे। इसलिए लीलाओं को अगर समझना है तो प्रेम चाहिए, अगर प्रेम नहीं है तो आप लीला को नहीं समझ सकते कोई भी चीज को। इवन हम साधारण रूप में देखते हैं कोई भक्त तो कुछ भी कार्य करता है, आप अगर उसको प्रेम करते हो उसका गलती नहीं दिखेगा आपको, वो ऐसा सब कुछ पॉजिटिव देखेंगे आप, नहीं नहीं वो अच्छा कर रहा है, शायद मैं गलत हूँ वो अच्छा कर रहा है, या गलती देखने पर भी हम उसको छुपा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नजरअंदाज करते, देखते नहीं। अगर प्रेम नहीं है तो सब कुछ उल्टा दिखेगा आपको। वो प्रश्न कब उठता है, जब भगवतों का सुनने के बाद, अगर विश्वास नहीं है तभी प्रश्न उठता है, अगर नहीं विश्वास है प्रेम है तो प्रश्न नहीं उठेगा। तो प्रेम जरूरी है भगवान को लीला को समझने के लिए। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंद माली पुरुषम तमहम भजामि। तो ये प्रेमांजन होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं है तो हम सही सही रूप में देख नहीं सकते भगवान को। तो हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न नहीं रहेगा मेरे पास। हरे कृष्ण, थैंक यू।
गुड मॉर्निंग।